अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतम् देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोली सच्चिदानंद घन भगवान की। प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ॐ मङ्गलम् ॐकार मङ्गलम् ॐ ब्रह्ममङ्गलम् ब्रह्माकार मङ्गलम् ब्रह्ममङ्गलम् ब्रह्माकार मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ॐकार मङ्गलम् ॐ विष्णुमङ्गलम् विष्णुकार मङ्गलम् विष्णुमङ्गलम् विष्णुकार मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ॐकार मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् शिवमंगलम शिवाकार मंगलम शिवमंगलम शिवाकार मंगलम ॐ मंगलम ओंकार मंगलम ॐ मंग ब्रह्ममंगलम ब्रह्मज्ञानमंगलम ब्रह्ममंगलम ब्रह्मज्ञानमंगलम ॐ मंगलम ओंकार मंगलम ॐ मंग तत्त्वमंगलम तत्त्वज्ञानमंगलम तत्त्वमंगलम तत्त्वज्ञानमंगलम ॐ मंगलम ओंकार मंगलम ॐ मंग गुरु मंगलम गुरु ज्ञान मंगलम गुरु मंगलम गुरु ज्ञान मंगलम ॐ मंगलम ओंकार मंगलम ॐ मंग भक्ति मंगलम भगवान मंगलम भक्तिमंगलम भगवान मंगलम ॐ मंगलम ओंकार मंगलम ॐ मंग भक्त मंगलम भगवान मंगलम भक्त मंगलम भगवान मंगलम ॐ मंगलम ओंकार मंगलम ॐ मंग ॐ मंगलम ओंकार मंगलम ॐ मंग ॐ मंगलम ओंकार मंगलम बोली सच्चिदानंद घन भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की राजा रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की जगज्जननी अम्बे माता की सद्गुरुदेव भगवान की अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप भक्तवृंद परम हर्षोल्लास आनंद का विषय परम पावन दिव्य तपोभूमि स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम का ये सुंदर भवन, वर्षों से अनवरत चलने वाला ये ज्ञान यज्ञ प्रातःकालीन अमृत बेला में हम आप नित्य प्रति अपने आप को इस सत्संग सुधा वर्षा में डुबाते हैं। कोई ना कोई ग्रंथ, कोई ना कोई शास्त्र हमारा माध्यम बनता है, तो ऐसे सुंदर प्रातःकालीन अमृत बेला के इस सुंदर प्रातःकालीन शुभ शांत वातावरण में बैठकर हम आप जो है अपने जीवन के लक्ष्य का, उसकी प्राप्ति के निमित्त किए गए यत्नों का विचार विमर्श करते हैं, चिंतन क्या है। तो इसी क्रम में वर्तमान में जो हमारा समय चल रहा है, जो विषय है श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान की दशम स्कंध में भगवान की सुंदर बाल चपल लीला जिनको कहा जाता है, साधारण सी दिखने वाली भगवान की बाल चपल लीलाएं, लेकिन इन बाल चपल लीलाओं में भरा हुआ अध्यात्म का गहन सागर और सांसारिक जीवन, जिसको हम लोग परा और अपरा दो प्रकार की जो विद्याएं हैं, दोनों विद्याओं को भगवान ने अपनी बाल लीलाओं में पूर्णतया हर प्रकार से जो है समझाने की चेष्टा की है कि एक साधारण सी दिखाई देने वाली लीला है और उसके अंदर छिपा हुआ जो हमारा सामाजिक जीवन है, और दूसरी तरफ है पूर्ण लक्ष्य जिसको हम लोग मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। तो ऐसा जो वो परम लक्ष्य है वो पूर्णतया भगवान की हर लीला में छिपा हुआ है। और पिछले 15 तारीख को हम लोगों ने जो सत्संग समाप्त किया था, उसमें हम लोगों ने भगवान के चीरहरण की लीला के ऊपर विचार किया कि किस प्रकार से जब तक भगवान हमारे चीर का हरण नहीं कर लेते, जब तक हम अपने चीर को स्वयं भगवान के समक्ष अर्पित नहीं कर देते, और उसका नाम है पुण्य और पाप, ये जो पुण्य पाप के चीर हम लोगों ने ओढ़ रखे हैं, जब तक ये पुण्य पाप का चीर हरण नहीं होगा तब तक हमको भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। तो जो बहुत ही विवादास्पद लीला मानी जाती भगवान की चीरहरण की, लेकिन विवाद उनके लिए है जो केवल सांसारिक रूप से भगवान को समझने का प्रयत्न करते हैं, भौतिक रूप से भगवान को समझने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन सनातन धर्म जब अध्यात्म की गहराइयों में अपने आप को निहारता है तो वहां स्थिति कुछ और होती है, और वहां पर हम जब तक, क्योंकि प्रभु जो सर्व साक्षी अंतर्यामी होकर जीव के हैं, प्रत्येक जीव के अंतःकरण में विराजमान हैं और सर्व कर्म साक्षी हैं, उनसे हम कुछ भी छिपा नहीं सकते, उनसे हम कुछ भी परोक्ष नहीं कर सकते जो स्वयं अपरोक्ष है। तो ऐसे परम ब्रह्म पुरुषोत्तम का जो है ये लीला अवतार या लीला रूप जो हम लोग विशेष रूप से चीरहरण के रूप में देखते हैं, और पुनः एक बार प्रार्थना कि ये भगवान की बाल लीलाएं हैं। सामाजिक रूप से भी यदि देखा जाए तो बहुत सी चीजों को भगवान ने उसमें समझाया और हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी। तो किस प्रकार से भगवान को समझने के लिए सर्वप्रथम तो जितनी भी हम ये श्रवण कर रहे हैं लीलाएं, इनकी ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि ये भगवान की बाल लीलाएं हैं। भगवान के जो हम लोग कैलेंडर रूप को धारण कर लेते हैं हृदय में, हमारे अंदर जो एक कल्पना बनी हुई है, और भगवान को जो हम बड़ा करके कैलेंडरों में चित्रों में दिखा देते हैं कि 20-25 वर्ष का नव युवक और उसके आसपास खड़ी हुई युवतियां, जबकि भगवान की बाल लीला में तो केवल बाल सेना थी, 8 वर्ष 9-10 वर्ष के बालक हैं, और यही स्थिति वहां पर जितने भी भगवान के बाल चपल मित्र थे वो जो सेना थी, उस रूप को हम भूलकर कुछ का कुछ ही भगवान को बना देते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि भगवान श्री कृष्ण को सामाजिक रूप से लोग कुछ का कुछ ही घोषित कर देते हैं। परम अलौकिक लीला को धारण करने वाले पुरुषोत्तम है ना, क्योंकि भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान ने स्वयं गीता में कहा कि भगवान के कर्म और जन्म दोनों क्या हैं? दिव्य हैं। हम भगवान की दिव्यता को भूलकर हम उनको एक साधारण सा क्या बना देते हैं, वासनाओं से इच्छाओं से घिरा हुआ मनुष्य दिखाना प्रारंभ कर देते हैं लोग, है ना, जबकि वहां ऐसी कोई भी बात या स्थिति नहीं है। भगवान ने जो भी किया है हमारे आपके लिए किया है, भगवान ने कुछ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं किया। जब गौ माता पृथ्वी माता जब गौ बन के महाराज भगवान के समक्ष अपने कष्ट का हरण करने के लिए पहुंची तब भगवान आते हैं, है ना। जब भगवान हजारों वर्ष तपस्या करते हैं तब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान की अपनी कोई इच्छा नहीं है कि मैं जाकर लीला करना प्रारंभ कर दूं, या भगवान सोचते हैं कि मेरा काम है, तो ये ऐसा कुछ नहीं। जब हम संकल्प करते हैं तब वो परम सत्ता परम ब्रह्म अपने रूप को रच करके सजाम में हम अपने आप को की का सृजन करती है, रचती है, और जो वो करते हैं अलौकिकता से भरा हुआ कार्य उसको हम लोग लीला बोलते हैं। तो साधारण सी लीलाएं एक हमारे यहां जो है नीति श्लोक आता है, साधारण सी जो अध्यात्म की एबीसीडी आती है कि किस प्रकार से परोपकाराय दुह्यंति गावा, परोपकाराय जो है फलंति वृक्षा, परोपकाराय बहंती नद्या, परोपकारार्थमिदं शरीरम। हमको जो ये शरीर मिला है और उसका मुख्य लक्ष्य जो है वो है परोपकार, क्योंकि आप लोग बारहवें एकादशी के दिन जो है बारहवें अध्याय का पाठ करते हैं, वहां पर ज्ञानी पुरुष के लक्षण बताए भगवान ने दो श्लोकों में। यद्यपि उसको जो है भक्ति का अध्याय माना जाता है, लेकिन जब हम उसी अध्याय में लगभग जो है आधे से ज्यादा श्लोक जो है ज्ञान को ही निरूपित करते हैं, और उसमें भगवान ने कई जगह गीता में एक शब्द प्रयोग किया, सर्वभूत हिते रता, है ना, संनियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्या ते प्राप्नुवंति मामेव सर्वभूत हिते रता। भगवान ने बहुत जगह सर्वभूत हिते रता की बात की है। जब तक हम संपूर्ण प्राणी मात्र के सेवा में रत नहीं होंगे, है ना, उपनिषद कहता ना, ईशावासी उपनिषद कहता अज्ञानेन मृत्युम तीर्त्वा, मृत्यु को पार करने के लिए अज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु किसकी होती है, शरीर की, और आत्मा कभी ना जन्म लेती है और ना मरती है। तो आत्मा कि मृत्यु जब है नहीं तो महाराज उसको पार कराने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान अज्ञान ये जो दो चीजें हैं ना, इसमें मृत्यु को पार करने के लिए अज्ञान की आवश्यकता है ना, और इसलिए हमारे यहां जो ज्ञान की प्राप्ति का साधन है वो क्या है, वो है महाराज परोपकार, है ना। जब तक हम अपने जीवन में परोपकार को स्वीकार नहीं करेंगे, ये अज्ञान यानी मृत्यु सिद्ध होने वाली नहीं है, इस मृत्यु के घेरे में ही हम फंसे रहेंगे। मृत्यु का घेरा कैसा है स्वयं आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, और हर बार जो है सत्संग में मैं ये प्रार्थना आपसे करता हूं, और पुनः एक बार अपने आप को पढ़ने की चेष्टा करें, क्योंकि हम अपने आप को आध्यात्मिक मान लेते हैं, आध्यात्मिक मान लेना एक अलग चीज है, लेकिन जब कसौटी की बात आती है कि क्या हमने अध्यात्म में प्रवेश भी किया है, तो वहां पर फिर कसौटियां शुरू होती हैं। जैसे कोई कंपनी चीज बनाती है ना, तो कंपनी जब चीज बनाती है तो उसको टेस्ट करती है कि चीज सही है या गलत है, तो हर चीज जितनी भी चीजें संसार में बनती हैं सबकी एक टेस्टिंग होती है। इसी प्रकार से अपने जीवन में अध्यात्म की टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। मान लीजिए आपको गीता के 700 श्लोक याद हो गए, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक याद है, हमारा 18,000 श्लोक याद है, तो हम अध्यात्मिक बन जाना एक अलग चीज है। लेकिन जब हम अपने आप को टेस्टिंग मशीन पे लगाते हैं तो टेस्ट कहता है कि जरा अपने आप को देखो कि क्या तुम्हारे अंदर से मृत्यु भय निकल गया। इसलिए जो है श्रुति कहती है अज्ञानेन मृत्युम तीर्थ, मृत्यु को पार करना बड़ा आवश्यक है हमारा। देखिए दो लक्ष्य हैं, एक नदी है, नदी के पार एक गांव है, और उस गांव में महाराज नंद किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता है, वो आपका लक्ष्य है, गंतव्य स्थान है ना। अब समस्या आपके सामने एक है कि पहले तो नदी पार हो और जब नदी पार हो तो महाराज आपको उस ग्राम में जाकर नंद किशोर का घर मिलेगा। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि केवल नदी पार करना आपका लक्ष्य नहीं है, और नदी पार करने के लिए आपको एक साधन चाहिए, और वो साधन सेतु भी हो सकता है और नाव भी हो सकती है। तो नाव से उस पार जाना केवल लक्ष्य नहीं है, नाव से उस पार जाकर नंद किशोर के घर तक पहुंचना आपका लक्ष्य है। तो ये दो लक्ष्य हैं, एक लक्ष्य तो है मृत्यु को पार करना, जैसे नदी को पार करना पहला लक्ष्य, उसके लिए नाव है, और उसके लिए नाव कौन सी है, आपका अपना शरीर। अब इस नाव से महाराज पहले उस नदी के पार उतरो, और जब आप नदी के पार उतर जाओगे तब आपको अन्यान्य साधन महाराज इस्तेमाल करने पड़ेंगे, फिर चाहे पैदल जाओ, बैलगाड़ी से जाओ, रेलगाड़ी से जाओ, उस ग्राम में फिर नंद किशोर का घर आपको मिलेगा, है ना। तो महाराज मुक्ति जिसको हम लोग मोक्ष कहते हैं, जो नंद किशोर का घर है महाराज, है ना, वो हमारी प्राप्ति यानी लक्ष्य है महाराज, है ब्रह्मता लक्ष्य मुच्यते जिसको श्रुतियां कहती हैं ऐसा। तो पहले महाराज ये नाव चाहिए, और भगवान उन छोटे छोटे बालकों को महाराज जब वन में लेकर घूमते थे तो उस समय उन बालकों को महाराज जो है दिखाते थे कि देखो बालकों, ये एबीसीडी है अध्यात्म की, और वास्तविकता में इस एबीसीडी को हम जिंदगी भर प्राप्त नहीं कर पाते हैं ना, और जिसने प्राप्त कर लिया उसको लोग इस दुनिया में महापुरुष कहने लगते हैं, और ये अध्यात्म की एबीसीडी भगवान अपने जो है छोटे छोटे बच्चों को सिखाया करते थे। कहते हैं देखो कि श्रेष्ठ जन्म किसका है, अहो एषाम वरम जन्म, इस संसार में श्रेष्ठ जन्म किसका है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से उन वृक्षों की ओर इशारा करके छोटी सी अपनी बाल सेना को बाल बुद्धियों के भीतर जो अमृत घोलना कहलाता है भगवान की ये बाल चपल लीलाएं हैं। कहते हैं देखो बच्चों, पत्र पुष्प फल छाया मूल वलकल दारु भी गंध निर्याश भस्मास्थि तोपमय कामान वितन्वते। कहते हैं जरा देखो इन वृक्षों की ओर देखो, भगवान कहते हैं ये अपने पत्र पुष्प फल, पत्ते फूल फल, छाया जड़ छाल लकड़ी, गंध गोंद राख कोयला अंकुर कोपल, कहते हैं इतनी सारी चीजों से पूरे विश्व के लोगों की कामना को, 84 लाख योनियों को ये वृक्ष इतनी सारी चीजों से तृप्त करता है। ये है परोपकार की सीमा महाराज। भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बच्चों ये वृक्ष जो है अपने पत्ते से किसी के जीवन की रक्षा करता है, अपने फूलों से किसी के जीवन की रक्षा करता है, माली उस फूल को इकट्ठा करता है, उसके पेट को फूल भरते हैं महाराज, फलों से हजारों लोग अपने जीवन को चलाते हैं, छाया से महाराज पथिक को शांति की मिलती है, जितनी भी चीज वस्तु पदार्थ है उस पेड़ के, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे वो सेवा नहीं करता है। भगवान कहते हैं ठीक इसी प्रकार से कौन, कहते हैं एताव जन्म साफल्यम, इस मनुष्य शरीर की देहिनाम यह देशो, ये जो देहधारियों में जो ये मनुष्य शरीर है इसका एकमात्र सफलता इसकी इस देह में आने पर यही है, प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय एवा चरेत सदा, सदा सर्वदा इसका जीवन जो है, जिसके जीवन में जो विशेष चीजें हैं वो कौन सी हैं, जो अर्थ प्रधानता हमारे यहां मानी गई, धन से, कहते हैं विवेक से, विचार से, वाणी से और अपने प्राणों से, इतनी चीजों से हम प्राणी मात्र की, जिसको भगवान ने कहा खाली मनुष्य की नहीं प्राणी मात्र की, सर्वभूत हितेरता की बात करता है शास्त्र, है ना, क्योंकि जब तक नाव से आप नदी पार करोगे नहीं तब तक आपको महाराज नंद किशोर का गांव मिलने वाला नहीं है। ये एबीसीडी है जो महाराज बच्चों को पढ़ाई जाती है, किस किस चीज से, कहते हैं प्राणैर अर्थैर धिया वाचा, तो वाचा यानी वाणी से, प्राण से आपके जो है बुद्धि से, और आपके अर्थ से यानी विवेक से, बुद्धि से, अर्थ से, इन चीजों से ये जो नाव है, ये जो शरीर रूप में हमको नाव मिली हुई है, इस नाव से आप इस संसार को पार कर सकते हैं जिसको भवसागर कहा जाता है। ये लक्ष्य नहीं है, ये केवल और केवल मात्र नदी के पार जाने का साधन है। नदी के पार जाने का मतलब क्या हुआ? मृत्यु भय से मुक्ति है। आपको जिस दिन मृत्यु भय से मुक्ति का अनुभव होने लगे, ध्यान देना, यस, जब आपको ये लगने लगे, आपने गीता में बहुत सुंदर एक श्लोक रट रखा है हमारा, है ना, ना जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरने जन्मने से न मैं जन्मने वाला हूं न मर, रटा हुआ है श्लोक में, लेकिन कोई उपयोग नहीं क्योंकि आप तो बीच मझधार में पड़े हुए मैं, क्योंकि आपका मृत्यु नाम आज आपको बता दिया जाए, एक ज्योतिषी हाथ देखे आपका और देखते ही हाथ कहे कि तुम तो एक घंटे के बाद मरने वाले हो, जरा विचार करके बताओ अपने दिमाग से तुम्हारी क्या दशा होगी, उसी समय आपको एक बढ़िया सुंदर सी रसमलाई की कटोरी हाथ में दूं और कहूं आपसे कि इसको क्या करो, क्यों भाई क्या होगा वो, बिल्कुल हृदय से बताओ, कटोरी तुमको रसमलाई की मीठी लगेगी या कड़वी लगेगी, है? बोले महाराज मैं मरने वाला हूं एक घंटे बाद और आप कह रहे हो क्या खाओ, पसीना छूट जाता है महाराज, होश उड़ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता आदमी को क्या करें और क्या निकला, अभी नदी पार नहीं हुई महाराज, अभी तो हमने अज्ञान को ही नहीं जीता, और इसके जीतने का एकमात्र रास्ता है जो यहां ये बताया जा रहा, सर्वभूत हिते रता, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं महाराज, एकमात्र रास्ता है परोपकारार्थमिदं शरीरम, है ना। जब तक जिस प्रकार से खाली भगवान ने तो ये पेड़ का एक उदाहरण दिया, जितने भी जीव हैं मनुष्य के अलावा, ध्यान देना, केवल पेड़ नहीं मनुष्य के अलावा जितने भी जीव हैं उनका पूरा का पूरा शरीर रंग संग प्रत्यंग सब काम आ जाता है, केवल मनुष्य के अलावा, मनुष्य का तो महाराज कुछ भी कार्य आने वाला नहीं है, है ना। देखो आप एक किडनी के लिए भी महाराज क्या होता है, व्यापार होता है कि नहीं होता, एक साधारण से मनुष्य के अंग का प्रत्यारोपण दूसरे के अंग में करना वहां भी क्या है, व्यापार खड़ा हुआ महाराज, है ना। गरीब लोग जो है अपनी किडनी बेचने के लिए चले जाते हैं, खरीदी जा रही, डॉक्टर लोग किडनी खरीद रहे हैं, कोई बेच रहा, ये है हमारी दुर्दशा हमारा, जरा देखो और जरा विचार कीजिए उन चूहों के बारे में, उन गिनपिग के बारे में जरा थोड़ा सा विचार कीजिए, जिनके ऊपर महाराज बीमारियां लगा लगा के दवाइयां टेस्ट करते हैं डॉक्टर लोग, अपना शरीर वो दान करके महाराज उन दवाइयों को हमारे लिए दे जाते हैं, विचार करो, है कोई तैयार, इतना वेदांत आपने पढ़ लिया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, दोगे जाके मेडिकल को कि लो भाई मेरा शरीर टेस्टिंग में लगा दो, जैसे वो चूहे का शरीर, उसने अपना दान कर दिया डॉक्टर को महाराज, पहले उसको बीमारी का इंजेक्शन दिया जाता, बीमारी पैदा की जाती, कैंसर नहीं है उसको लगा दिया जाता, क्यों भाई, है वेदांत का कोई ग्राहक यहां पर, हम खाली बातें ही तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं महाराज, हम तो वेदांत वाले, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, चलो बनो आत्मा, जरा उस चूहे से अपनी बराबरी करके देखो कि क्या वहां तक भी हम पहुंचे हैं, वो चूहा तुम्हारा तैयार खड़ा है, लगाओ इंजेक्शन लगा के महाराज उसके अंदर बीमारी पैदा कर दी, थी नहीं उसके अंदर, पैदा कर दी, कितनी हिम्मत है हमारे अंदर, ना जाए थे मृते वा कर, इसकी सिद्धि क्या है, एक बात बताओ ये शरीर रहेगा हमेशा या चला जाएगा, और चला ही नहीं जाएगा महाराज, तुम्हारे अपने ही इसको जला के क्या कर देंगे, मेरे को तो अभी भी जो है बीसों साल पहले हैं जब से सत्संग किया, आज भी वो कुर्सी में वो बैठे हुए श्रोता दिखाई देते हैं महाराज, जिनका शरीर इस दुनिया में क्या हो चुका, भस्मीभूत हो चुका महाराज, यहां लाइन से ऐसे बैठते थे सारे, कहां गए, चला गया कि नहीं चला गया, वास्तविकता में हम शरीर हैं ही नहीं, लेकिन मृत्यु भय हमारा निकलता नहीं महाराज, देखो कितनी विचित्र बात है, केवल ना जाए थे मृते वक्त, रटा बहुत बढ़िया हमने, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, मैं कभी होने वाला ना था ना हूं ना होऊंगा, मैं तो अजर अमर अविनाशी तत्व हूं, फिर तुमको मरने से डर क्यों लग रहा, उस चूहे को तो नहीं लगता, उसने तो महाराज बड़ी सहजता से आपकी बीमारियों के इलाज के लिए बीमारी ग्रहण कर ली महाराज, कैंसर लगा लिया, ना जाने कौन कौन सी बीमारियों का टेस्ट उन चूहों के ऊपर किया जाता है। पहले बीमारी लगाई गई, उसके बाद उसको दवाई दी गई, ठीक हो गया तो हो गया, मर गया तो उठा के फेंक दिया। जरा सोचो अगर आपके संग ऐसा किया जाए तो क्या तुम तैयार हो जाओगे सहर्ष? इसका मतलब अभी हमारे अंदर से ये अज्ञान निद्रा जो है टूटी, अभी मैं अपने आप को शरीर ही मान रहा हूं और शरीर नहीं मान रहा हूं, शरीर को ही आत्मा मान रहा हूं। इसलिए जो है इन लीलाओं को भगवान की जो ये अध्यात्म की सराबोर गहराई, जो कहते सागर, सागर की तरह महाराज गहनता जिसमें जल की कोई था नहीं, अध्यात्म की परम लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त जो यत्न होना चाहिए, जो प्रयत्न होना चाहिए, जिसको हमारे शास्त्र कहते हैं एड़ी से लेके चोटी का जोर जब लगेगा तब जाकर। योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी से भगवान श्री राम से कहते हैं राम तुमको जो है नख से सिर तक जोर लगाना पड़ेगा तब ये जो है सिद्ध होगा कि तुम शरीर नहीं, तुम अजर अमर अविनाशी तत्व, ना जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविताय वा न भूया। इसीलिए हमारे यहां शास्त्रों में ये उदाहरण दिए जाते हैं। तो भगवान ने एक वृक्ष के द्वारा है किस प्रकार से अपना सब कुछ लुटाकर वो वृक्ष प्राणी मात्र की सेवा कर रहा है। जब हम इस प्रकार से अपने मन बुद्धि चित्त है प्राण है, स्वयं हमारे यहां उदाहरण आते हैं, दधीचि ऋषि का उदाहरण आता, अनेक है, एक दो नहीं है महाराज, जिन्होंने महाराज धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को अभी बलिदान देने में कोई देर नहीं की, क्योंकि उनका लक्ष्य जो है वो परमेश्वर है। हमारा द्वितीय लक्ष्य परमेश्वर है, प्रथम लक्ष्य संसार है, इसलिए हमको मृत्यु से भय लगता है। हम नदी पार कर लेने को ही लक्ष्य मानते हैं हमारा, है ना, लक्ष्य केवल मृत्यु जीतना नहीं है। जब आप मृत्यु रूपी जो है साधारण सा लक्ष्य जीतोगे तब जाकर, है ना, देखो हमारे यहां तो वेद में उदाहरण आते हैं, उपनिषदों में उदाहरण आते हैं, कठश्रुति क्या कैसा है, किसको सुनने को मिली, यमराज ने किसको उपदेश किया, उस नचिकेता को, पिता के कहने पर महाराज जाकर अपना शरीर भूखा प्यासा रखकर तीन दिन उस बालक ने अपने शरीर को छोड़ दिया, कोई देर नहीं लगाई महाराज, छोड़ा कि नहीं छोड़ा शरीर, नचिकेता ने जब शरीर छोड़ा तभी तो यमराज के पास पहुंचे, क्यों भाई, कि सशरीर पहुंच गए, आज तक ऐसा हुआ तो नहीं है, शरीर छोड़ना पड़ा महाराज नचिकेता को। और जाकर के आप लोग हम कल्पना करते हैं कि जैसे नचिकेता यमराज के घर की कुंडी खटखटा रहा था डोरबेल कि मैं आ गया, अगर ऐसा होता उसी शरीर से यमराज के पास जाते नचिकेता, तो महाराज नचिकेता यमराज से ये वरदान तो कभी नहीं मांगते कि मेरे जाने के बाद जब मैं वापस अपने पिता के पास जाऊं तो मेरे पिता मुझे पहचान लें, क्यों मांगा कि नहीं मांगा, क्योंकि जब भी हम इस शरीर को छोड़ेंगे और नया शरीर हमको प्राप्त होगा हमारा रूप क्या हो जाएगा, असंख्य रूपों को हमने धारण किया, तो नचिकेता का भी वही होना था महाराज, जब मैं अपने पिता के पास वापस जाऊं तो महाराज मेरे पिता मुझे सबसे पहले तो क्या पहचान जाए कि ये कोई दूसरा नहीं बल्कि मेरा ही क्या है पुत्र है। महाराज भगवान कहते हैं नहीं कि अर्जुन मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूं मगर तुम मुझे, उसको जान सबको जान, सब उसको जान लें ये संभव नहीं है महाराज, लेकिन वो सबको जानता है। तो महाराज ने वरदान दिया था नचिकेता को कि हाँ जब तुम वापस जाओगे यमपुरी से तो नए रूप में जब तुम होगे तो तुम्हारे पिता तुमको पहचान लेंगे, है ना। कितने उदाहरण है, आप नारद जी का उदाहरण आता है, जब उनको महाराज भगवत प्राप्ति या परम लक्ष्य की प्राप्ति हुई, दासी पुत्र से महाराज नारद बने, लेकिन उनको याद था कि हाँ मैं दासी पुत्र से क्या बना है, ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर प्रकट हुआ, है ना। इसी प्रकार से जड़ भरत जी को याद था कि मैं किन किन योनियों से गुजर कर आया हूं, इसी प्रकार से आपको भी ये अनुभव होगा महाराज, है ना, ज्ञान दृष्टि जिसको कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जितने भी उदाहरण हमारे वेदों के द्वारा दिए गए हैं, सबसे पहले तो हम इस मृत्यु भय को जो है पार करें। नदी पार करना लक्ष्य नहीं है, नदी पार कर लेने मात्र से आपका जो ये मृत्यु भय जो है ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, निकल जाएगा महाराज। इसीलिए परोपकार सबसे बड़ा हथियार औजार माना गया है ना। जैसे इस संसार के बंधन को काटने के लिए है कौन सा अस्त्र है, क्यों भाई? अरे पंद्रहवें अध्याय भगवान ने हैं? हाँ, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ये जो दृढ़ जड़े जमी हुई हैं संसार की वासनाओं की, इसको असंग रूपी जो शस्त्र है हमारे पास, उससे क्या कर दो? कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ज्ञान वैराग्य, क्या नाम, वैराग्य और अभ्यास, दो चीजें हैं ना, दो चीजें हैं, केवल दो चीजें, और इन्हीं से ही आप अपने चंचल मन की गति को मोड़ सकते हैं परमेश्वर की ओर। दूसरा कोई रास्ता, हाँ, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण चक्रयते। तो भगवान ने एक साधारण से पेड़ से असाधारण उदाहरण दिया है महाराज, कि किस प्रकार से इस मृत्यु रूपी जो नदी है इसको पार किया जाए, क्योंकि जब तक ये पार होगी नहीं तब तक महाराज आगे की साधना संपन्न नहीं होगी, है ना। तो इसलिए सबसे पहले हमारा धर्म है कि हम अपने मन को, अपने धन को, अपने शरीर को, यानी जो कुछ भी हमारा अंग प्रत्यंग जिसको हम शरीर या शरीर से संबंधित चीजें कहते हैं, इन सबको विवेक बुद्धि, यदि आपकी विवेक से किसी का भला होता है तो महाराज भला करो, यदि आपकी वाणी से किसी का भला होता है तो उसका भला करो महाराज, यदि आपके प्राणों से आप किसी का भला होता है तो महाराज अपने प्राणों के त्यागने में भी आपको देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने तो सब सारे रहस्य गीता में खोल रखे, वासान से जीर्णानि यथा भी है नवानि गृहणाति नरो प्राणी। ये मृत्यु क्या है? बोले कपड़े बदलने की तरह, जिस प्रकार से एक राजा जो है महाराज जितनी चाहे उतने जो है कपड़े बदलकर बार बार अपने जो है वस्त्रों को बदल सकता है, क्योंकि उसके पास अनगिनत वस्त्र हैं, इसी प्रकार से ज्ञानी महापुरुष को भी महाराज कोई परेशानी नहीं, जितनी बार वस्त्र बदलना पड़े कोई पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वस्त्रों के बदलने से मैं बदलने वाला बदल जाएंगे। राजा सुबह से शाम तक 40 ड्रेस बदले तो उसका क्या फर्क पड़ता है महाराज, क्योंकि उसके पास तो असंख्य है। भगवान कहते आसान से जीर्णानी यथा भी है। तो जो ये शरीर का छोड़ना है ये सब केवल माया मात्र है, इसमें कोई दम नहीं है। और 84 लाख बार तो कम से कम हम लोग क्या कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं महाराज, ये कपड़े बदल चुके हैं, लेकिन अब हमको इस कपड़े को फिर से बदलने में क्या लग रहा है, भय लग रहा है, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा। देखो नदी पार नहीं हुई तब तक महाराज वो परम लक्ष्य कैसे मिलेगा महाराज, इसलिए अविद्या से पार कर लो इस नदी को। और अविद्या क्या है? ये परोपकार, ये सब कुछ जो है अपना लुटा देना क्या है, यही तो अविद्या है। क्योंकि अविद्या की व्याख्या कर की गई, जो हम लोग अगली कथा श्रवण करने जा रहे हैं महाराज, यज्ञ पत्नियों पर जो भगवान ने कृपा की है आपको पहले भी और पुनः जो है अभी भी बताया था, कि सबसे जो है अयुक्त बुद्धि में जो है विवेक नहीं होता, और अयुक्त बुद्धि होने पर, विवेक ना होने पर महाराज उसमें भाव जागृत नहीं होता, और जब तक आपके अंदर भाव नहीं होगा तब तक आपके अंदर जो है भगवत प्रेम या अपने लक्ष्य के प्रति आपका प्रेम नहीं होगा, है ना। ध्यान देना, लक्ष्य निर्धारण करना एक अलग चीज है और लक्ष्य के प्रति समर्पण अलग चीज है, है ना। एक संत जो है तो मैं सुन रहा था, बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे, बड़ा सुंदर उदाहरण महाराज, ऐसा जोरदार उदाहरण, क्या बात है। कहते हैं जरा देखो, किसी माँ बाप का एक बच्चा जो है खो गया, अब बच्चा खो गया महाराज, उसकी जो है फोटो टीवी में दे दी गई, अखबारों में दे दी गई, पंपलेट में दे दी गई, और जो है बड़ी सुंदर बच्चे की फोटो, और सबको महाराज पकड़ा दी गई, यदि आपको ऐसा बच्चा कोई दिखाई दे तो क्या करो। अब महाराज जो है सब फोटो देखकर, देखो कितना सुंदर बच्चा है, ऐसा कहते हैं कि नहीं, देखो कितना कितना बढ़िया, लेकिन उनका लक्ष्य जो है उसको ढूंढना नहीं है, खाली उनको क्या लग रहा है, अब मिल जाएगा तो बता देंगे। क्यों भाई, इतने खोए खोने वालों के आपको चित्र दिखते हैं कि आप ढूंढते हो उनको कभी, है बस देखते हो, अरे देखो कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा करके महाराज आप उस चित्र को अपनी जेब में रख लेते हो या कहीं फेंक देते हो, यही करते हो कि नहीं करते। लेकिन जरा एक बात बताओ, उस माता को जो सबसे ज्यादा मोह किसको होता है, माता को, माता को क्या वो जगह जगह छपे हुए चित्रों से संतुष्टि हो जाती है, है? उसको तो महाराज संतुष्टि तब हो जब वो उसका बालक क्या हो जाए, तब तक वो बेशुद्ध होकर खाना पीना पहनना सब भूलकर अपने बच्चे का क्या करती है, अनुसंधान करती है महाराज, और हर चेहरे में अपने बच्चे को ढूंढने का प्रयत्न करती है कि नहीं करती। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति इतने जो है क्या हो जाओगे, इसको कहते हैं लक्ष्य के प्रति समर्पित होना। फोटो देखने वाले तो बहुत हैं, फोटो देख के हम संतुष्टि कर लेते हैं, हाँ भगवान की बड़ी सुंदर मूर्ति है, भगवान की बड़ी सुंदर फोटो है। लेकिन महाराज ये बड़े सुंदर ग्रंथ हैं, वाह वाह क्या लिखा है महाराज ग्रंथ की, है ना, बड़ा बहुत बढ़िया ग्रंथ है। ये केवल उतना ही काम है जितना हर व्यक्ति उस बच्चे की फोटो देख रहा है। बड़े प्रसन्न महाराज क्या मूर्ति बनाई, अरे देखने लायक मंदिर है, तुम भी जाना। लेकिन महाराज क्या आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं उस मां की तरह, जैसे वो मां जब तक महाराज वो बच्चा नहीं मिल जाएगा तब तक ना उसको भूख है ना प्यास है, ना उसको खाना अच्छा लगता है ना पहनना अच्छा लगता। भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्ते वैरागीण च गृह्यते, ये है वो अभ्यास और वैराग्य महाराज जो उस मां से हमको सीखना है। जैसे वो मां बेसुध है तब तक, जब तक उसका बच्चा, उसको उस फोटो के आप दिखाओ जाके कि ये देखो फोटो तुम्हारे बच्चे की, उठा के फोटो को फाड़ के फेंक देगी, क्योंकि उसका बच्चा कहां पे है, उसके हृदय में महाराज। उसको उस फोटो की आवश्यकता नहीं है, हम केवल सारा जीवन फोटो से काम चलाते रहते हैं, कभी ये ग्रंथ कभी वो मंदिर, कभी एक मंदिर से दूसरे मंदिर, कभी एक ग्रंथ से दूसरे ग्रंथ, इसी में हमारा सारा जीवन क्या हो जाता है, अच्छा अच्छा करके निकल जाता महाराज। लेकिन अच्छा नहीं, सवाल है लक्ष्य की प्राप्ति का, सवाल है बालक के मिलने का। इसलिए सबसे पहले तो मृत्यु को पार करने का तरीका भगवान ने बताया, परोपकारार्थम इदम शरीरम, है ना। तो 15वें अध्याय में भगवान ने क्यों नहीं मिलता उपनिषद के माध्यम से भी समझे और महाराज गीता जी के माध्यम से, क्योंकि सारे शास्त्रों का निचोड़ है श्रीमद् भगवद गीता, सारे जितने भी वेद उपनिषद के वाक्य हैं सबका निचोड़ महाराज श्रीमद् भगवद गीता है। और यहां पर भी स्पष्ट रूप से दोनों जगह महाराज कहा गया, और भगवान ने उसी चीज को और साधारण बना दिया जिसका नाम है लीला। क्योंकि परमेश्वर सबके लिए स्वतंत्र है, परमेश्वर के लिए कोई ये निर्धारण नहीं है कि इसी व्यक्ति को मिलेगा, ऐसा उसके पास है तभी उसको मिलेगा। जैसे धन, धन सबके लिए स्वतंत्र है। आपने संसार में देखा कि नहीं देखा है, बड़ी बड़ी महाराज ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, पूरा पूरा विजिटिंग कार्ड जो है डिग्रियों से क्या है भरा हुआ है, और आपसे पूछ रहा होगा कोई नौकरी हो तो बताना है। और एकाएक आपको एक व्यक्ति मिलता निरक्षर, जिसको एबीसीडी भी नहीं आती, और उससे पूछो महाराज क्या करते हो, बोलता मेरी चार फैक्ट्रियां हैं, और उन एक एक फैक्ट्री की कमाई महाराज 1 अरब रुपए साल की, 4 अरब रुपए हर साल कमाता बिना पढ़ा लिखा। लक्ष्मी सबके लिए स्वतंत्र है महाराज, इसी प्रकार से परमेश्वर भी सबके लिए स्वतंत्र है, उसका कोई बंधन नहीं है कि इसी को मिलेगा। और इसीलिए हमारे यहां शास्त्रों में हजारों, एक नहीं हजारों उदाहरण आपको इस प्रकार के मिलेंगे कि परमेश्वर की स्वतंत्रता जो है, यानी परम लक्ष्य की जो स्वतंत्रता है सबके लिए, यही भगवान की लीलाएं समझाती हैं। और यही वेद के मंत्र और यही उपनिषद और गीता के मंत्र बोलते हैं कि किस प्रकार से जो है ना, भगवान गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं, यतंतो योगिनश्चैनम पश्यंत आत्मन्यवस्थितम यतंतोपकृतात्मानो नैनम पश्यंत चेतसा। पहले भी इस श्लोक को हम लोगों ने लक्ष्य के रूप में लिया कि यत्न करते हुए वही एक योगी पुरुष क्या करता है, अपने अंतःकरण में स्थित उस परमेश्वर को देख लेता है, पश्यंत आत्मन्यवस्थितम अपने आप में ही प्राप्त कर लेता। लेकिन दूसरा जो है वो यत्न करते हुए भी, वही सारे यत्न हैं, यत्न सारे वही हैं, लेकिन महाराज अशुद्ध अंतःकरण होने के कारण अचेतसा, भगवान ने इसीलिए शब्द प्रयोग अचेतसा, अचेतसा का मतलब जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है ना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहते भगवान स्पष्ट शब्दों में कि छल कपट से युक्त जब तक हृदय है तब तक हम परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को, है तो अपरोक्ष लेकिन उस अपरोक्ष का हम साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तोक्त कृतात्मानं अकृतात्माना, भगवान कहते हैं नैनं पश्यन्त अचेत, ऐसा जो अचेत जो उस जो है शुद्धि को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जब तक ये परोपकार वाली गली पार नहीं होगी महाराज तब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक महाराज वो परोक्ष ब्रह्म जिसको हमने परोक्ष बना रखा है, अपरोक्ष होते हुए भी अपरोक्ष ब्रह्म का साक्षात्कार संभव नहीं है महाराज। और इसी को जरा उपनिषद की भाषा में देख लो, है ना, देखो हमारे यहाँ एक श्रुति है जिसको हम लोग मुंडक कहते हैं, मुंडक श्रुति में स्पष्ट शब्दों में जो है आता है कि किस प्रकार से जब मुंडक श्रुति प्रारंभ हुई तो महाराज ऋषि, चूंकि हमारे यहां ऋषियों की जो कुछ भी है हमारे यहां सब प्रश्नोत्तर है, और प्रश्नोत्तर का मतलब समझते हैं आप, क्यों भाई प्रश्नोत्तर का मतलब क्या होता है, हैं सवाल जवाब, क्या सवाल जवाब, सवाल हमारी शंका क्या है, दूसरे की शंका से हमारा मतलब नहीं है भाई। आप शहर में गए, आपको कोई एड्रेस पूछना तो आप अपना एड्रेस पूछोगे या सबका एड्रेस पूछोगे, जो शंका हमारी है उस शंका के समाधान को जब हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए जब हम अपने शंका को रखते हैं उसको, वो क्या कहलाता है, वो प्रश्न कहलाता है, है ना, ये मेरी शंका है इसका मैं समाधान चाहता हूं। और शंका कैसी होनी चाहिए, क्यों भाई, भाई शंका किस लिए करेंगे, फिर गड़बड़ी कर रहे हो, शंका हम इसलिए करेंगे कि क्योंकि हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है। अरे आपका लक्ष्य क्या है, मकान को ढूंढना, ये आपका लक्ष्य है, और उस मकान को ढूंढने के लिए आपने जो शंकाएं, ये सड़क कहां जाती है, ये सड़क बाएं कहां मुड़ेगी, दाएं कहां मुड़ेगी, ये सब क्या है, शंकाएं हैं। और जो जो आपका समाधान करता जाता है आप अपने लक्ष्य की ओर क्या करते जाते हो, यानी प्रश्नोत्तर जो हमारे ग्रंथ प्रश्न और उत्तर हैं, किसी भी ग्रंथ में चले जाओ, चाहे पौराणिक ग्रंथों में चले जाओ, चाहे जो है वेदों में चले जाओ, उपनिषद में चले जाओ, हर जगह क्या है, पहले प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर ही ये ग्रंथ है महाराज। पूरा का पूरा श्रीमद् भागवत शास्त्र केवल जो है किसका उत्तर है, परीक्षित के द्वारा किए गए दो प्रश्नों का उत्तर ही इतना बड़ा शास्त्र है महाराज, कि जिसकी मृत्यु बिल्कुल निकट हो उसको क्या करना चाहिए, और महाराज सर्व साधारण के लिए करने योग्य क्या कार्य है कल्याणार्थ, बस इस प्रश्न का, इन दो प्रश्नों का उत्तर इतना बड़ा शास्त्र महाराज तैयार हुआ। तो यहां पर जो है शौनक ऋषि जो है महर्षि अंगिरा के पास गए और उन्होंने अपने जो है पूछा कि क्या है, जानने योग्य क्या है महाराज, दो विद्याएं जो आपने बताई कि परा है और एक दूसरी अपरा है, तो जरा गौर से सुनो महाराज, समय तो जा रहा है लेकिन फिर भी आपको केवल एक श्लोक, क्योंकि हम अपनी लीला जो हम जिसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, मैंने आपसे फिर से प्रार्थना जो है मैं करना चाहूंगा, ये साधारण नहीं है, दिखाई देती साधारण है लेकिन महाराज असाधारण गहराई है। जितना शांत पानी होगा उतना क्या होगा, और जितना अशांत होगा उसका मतलब उतना ही क्या है, छिछला है। तो जरा सुनो, कहते हैं तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अथर्ववेदा शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिष्मिति। ये तो है तत्र अपरा, ये सब क्या कहलाती हैं, ये सब अपरा है। तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अथर्ववेदा शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति। ये तो सब अपरा हैं, अथ परायया तदक्षर मदिगम्यते। कहते हैं जो अविनाशी परम ब्रह्म तत्व से जिसके द्वारा जाना जाता है वो महाराज परा विद्या कहलाती है। लेकिन हमारे जो सामने समस्या है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद आती है महाराज शिक्षा और उसके संग जुड़ा हुआ कल्प, और कल्प के बाद महाराज जो शब्दों का हर समय ये व्याकरण बदलती रहती है। वर्तमान में पिछले 2000 वर्षों से जो है महाराज पाणिनि के व्याकरण से ग्रंथों का समाधान किया जा रहा, तो व्याकरण बदलती रहती है। हर समय की अपनी कोई व्याकरण होती है, निरुक्तम है, वेद का कोश है महाराज, छंद है और ज्योतिष शास्त्र हमारे है ना, जो वेद की आंख मानी गई। तो ये 6 अंग माने गए, 4 वेद और 6 अंग यानी 10, ये सब के सब अपरा में आते हैं, परा में नहीं आते हैं। ये नाव है, ये सारी की सारी केवल नदी पार करने की क्रिया है ये सब। लेकिन इतने में ही परांगत हो जाने पर हम अपने आप को क्या मान लेते हैं, ब्रह्मज्ञानी घोषित कर देते हैं हमारा। अभी नदी पार नहीं हुए, नदी पार तो तब माने जाओगे जब तुम्हारे अंदर से मृत्यु भय क्या हो जाएगा। हर समय अपने आप को जगमगाता हुआ जीवन मुक्त अनुभव करोगे, शरीर रहे या ना रहे मेरा कुछ भी बनने बिगड़ने वाला। अरे भाई पृथ्वी के नष्ट होने से सूरज का कुछ बिगड़ेगा, लेकिन सूरज के नष्ट होने से महाराज पृथ्वी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यानी चारों वेद ये तो किसकी वाणी है, ये उपनिषद की वाणी महाराज मेरी नहीं है। ऐसा मत सोचना कि मैं आपको बता रहा हूं, ये तो आपको मैं साक्षात उदाहरण दे रहा हूं अंगिरा ऋषि का, जो मुंडक में महाराज मुंडक श्रुति में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताई है कि किस प्रकार से ये चारों वेद और इसके वेदों को पढ़ने पठन पाठन के लिए जो 6 अंग बनाए गए ये सब मिलकर हमको जो है नाव यानी मृत्यु से पार कराते हैं। और तब जो आगे का जो अनुभवात्मक सत्ता का अनुभव है उसका जब हम आनंद लेते हैं वो पराविद्या है। और उसको समझना, जब तक हम ये पार नहीं कर लेंगे, यानी गांव में प्रवेश तो तब मिलेगा जब हम पहले नदी को क्या कर लें, पार कर लें। तो महाराज यहां पर यज्ञ पत्नियों की कृपा का बड़ा सुंदर जो है भगवान की लीला का वर्णन आता है, इसको लीला को हम लोग जो है कल प्रारंभ करेंगे। तो आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करते हुए बोलिए सच्चिदानंद गण भगवान की, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। पूज्य महाराज जी के पुण्य श्री चरणों में वंदन। बड़ी ईश्वर की कृपा है हमारे पर कि पूज्य महाराज जी वापस हमारे बीच में आए हैं और वही कथा का ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। महाराज जी ने अभी अभी एक बात बताई कि जो लक्ष्मी है वहां रुकती नहीं, वो अपनी रीत से चाहे अनपढ़ हो उसको भी वरदान देकर कृतार्थ करती है। महाराज का जीवन ऐसा है कि अगर वो अरबपति होगा तो भी वो कोशिश करेगा कि अपने बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि जमाना पूरा एजुकेशन का हो गया है। उस रीत से हम पहुंचाएं कि बच्चे एजुकेशन में तो माहिर हो ही हो, करना ही चाहिए आज के युग के हिसाब से, और उसके साथ साथ जो हमारी संस्कृति है, हमारे शास्त्र है, हमारे भजन के स्वाद है, हमारे जो व्याख्यान है, जो चरित्र है गान, उसका भी थोड़ा थोड़ा संस्कार हम घर में डालते जाए तो कितने भी डिग्रियां हो जाए विजिटिंग कार्ड में, मगर उसके मन में वह वो बात नहीं रहेगी। और शास्त्र उसको ऐसी दिशा देगा कि जिससे वह अपना कल्याण कर सकेगा और कुटुंब के साथ मिलकर बहुत ही अच्छी तरह से जी सकता है। तो यह शास्त्र की बातें हैं और बच्चों को यह संस्कार डालने के लिए जानते हैं कि प्रेमपुरी आश्रम में बाल संस्कार केंद्र भी